फिर उसके बाद अल्लाह ताला एक दूसरे तरफ इशारा करते हैं आयत 31, सुम अंशअना मिन बादिहिम क़र्नन आखरीन, इनके बाद हमने एक दूसरे दौर की कौम उठाई, फिर उन्हीं में से इन्हीं की कौम का एक रसूल भेजा जिसने इनको दावत दी कि अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई और माबूद नहीं, क्या डरते नहीं हो? उनकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया और आखरत की पेशी को झुटलाया, जिनको हमने दुनिया की जिंदगी में आसूदा कर रखा था। इसको हाईलाइट कर, दुनिया की दौलत बुरी नहीं है, लेकिन ये दौलत इंसान को बुरा बना देती है। कब? जब वो कहता है कि दुनिया में जो मिला अब मुझे दूसरी तरफ भी मिलेगा। क्या कहा उन्होंने? वो कहने लगे, कौन? दौलतमंद। ये शख्स कुछ भी नहीं मगर एक बशर तुम ही जैसा, तुम जो कुछ खाते हो वही ये खाता है, जो कुछ तुम पीते हो वही ये पीता है। ये भी एक प्रोपेगंडा होता है कि दीनदारों को सुपर ह्यूमन पेश करो। और आज भी आप देखिए कि बास दीनदारों का रख रखाव और उनको देखकर या उनकी चाल ढाल और उनके पोस्चर से ये पता चलता है कि वो अपने आप को जरा दूसरों से आला ही समझते हैं। जैसे किसी ने कहा कि एक जगह कुछ थे तो फ्रूट उनके आगे रखा, तो उनका नहीं जी हम तो अब जाके जन्नत में ही खाएंगे। तो अब आम लोग बेचारे दुखी हो गए ना कि फ्रूट खाना शायद गुनाहगारों का ही काम है, तो भाई अल्लाह ने क्यों बनाया, गल जाएगा। तो ये म्यार नहीं देना, चूंकि हम नेक है तो हम तो फ्रूट खाते ही नहीं, चूंकि हम नेक है हम अच्छे कपड़े पहनते ही कोई नहीं। ये भी आर्टिफिशियल तकवा, ये दिखावे का तकवा होता है। केले में खा लेंगे मुर्गी मसलम पपायर कहेंगे हम तो दाल ही खाते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम इंसान हो, नबियों का इंसान होना कोई बुरी बात नहीं होती, तो लिहाजा ऐसी सारी चीजों को सुनते वक्त इसको देखें। और हकीकत है कि लोग चाहते वैसे यही है कि दीनदारों को बड़े खूबसूरत केजिस में रखकर उनको खूब खिदमत करें और उनको आम जिंदगी से निकाल दें। और आम जिंदगी में इनका क्या काम? तौबा करो, ये तो हमारे लिए ये कुछ कर देंगे। और आप देख लीजिए, दीन वाले की मौका पड़ेगा शादी पे निकाह पढ़वाना, मौलवी साहब को ढूंढे, बच्चा पैदा हो गया अजान दिलवा दे, कोई फौत हो गया तो उसको जनाजे के लिए बुला ले, दैट्स इट। बाकी काम कौन करेगा? वो दुनियादार करेंगे। तो दुनियावी कामों को पीछे डाल के अपने हाथों में रखने वाले दीनदारों के बारे में यही गुमान रखते हैं कि इनको वो सब काम नहीं करने चाहिए जो हम करते हैं। फिर कहने लगे, अब अगर तुमने अपने ही जैसे एक बशर की तात कबूल कर ली तो तुम तो घाटे ही में रहे। ये तुम्हें इत्तला देता है कि जब तुम मरकर मट्टी हो जाओगे और हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाओगे, उस वक्त तुम कब्रों से निकाले जाओगे। बिल्कुल बईद है, मतलब दूर, यानी इम्पॉसिबल। या बईद का मानी क्या? इम्पॉसिबल, बिल्कुल बईद है ये वादा जो तुमसे किया जा रहा है। जिंदगी कुछ नहीं मगर बस यही दुनिया की जिंदगी, इसको क्या कहते हैं? बाबर वैश कोश के जहां दोबारा नहीं। ये देखिए, मन चले लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि इस दुनिया की जिंदगी को सब कुछ करके पेश करो, फिक्र करो। हाँ भाई, पढ़ना तो है ना, खाना तो है ना। तो यही कहते हैं, देखो तुम्हारी बातें मान के तुम सिर्फ दीन के हो गए। ये नहीं पता जो सिर्फ दीन का हो जाता है दुनिया सारी उसकी हो जाती है। यही हमको मरना और जीना है, और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं है। आज है लोगों का ये गुमान। हजरत ईसा के बारे में आता है कि उनके पास एक औरत आई तो वो अपने बच्चों की मौत का अफसोस कर रही थी कि मेरा एक बेटा 300 साल का होके फौत हो गया, दूसरा बेटा 200 साल का होके फौत हुआ। तो उन्होंने कहा कि अम्मा तुम खुशकिस्मत हो, हमारे बाद तो एक ऐसी उम्मत आने वाली है कि जिनकी शान तो बहुत है लेकिन उनकी उम्रें बड़ी छोटी होंगी। तो सम्मा ने क्या कहा कि अच्छा फिर तो वो मट्टी के घरों में रहेंगे, 60-70 साल के लिए कौन घर बनाए। अब इस जुमले को सुनिए, यही हमको मरना और जीना है और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं। क्या आज हमें ये लगता है कि हमें सिर्फ इधर ही मरना जीना? सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। गौर करें, एक और इल्जाम नबियों पे, ये शख्स अल्लाह के नाम पर महज झूठ घड़ रहा है और हम कभी इसकी बात मानने वाले नहीं। देखिए ये सारे जुमले क्या है, शक पैदा करें, ईमान पे हमले किए जा रहे हैं। इनकी विशफुल थिंकिंग थी कि काश ऐसा हो कि अल्लाह ना नबियों की और दीनदारों की मदद करे और ना क्यामत आए और ना कुछ हो। अब इतनी कड़वी कुसैली बातें सुन के रसूल बोले, रसूल ने कहा परवरदिगार इन लोगों ने जो मेरी तकजीब की है इस पर अब तू ही मेरी नुसरत फरमा, जवाब में शाद हुआ करीब है वो वक्त जब कि अपने किए पर पछताएंगे। किए पे पछताता है बंदा मौत के वक्त, इंसान मौत के वक्त पछताता है कि मैंने अपनी जिंदगी को क्या समझा था और वो क्या बनी। आखिरकार ठीक ठीक हक के मुताबिक एक हंगामे अजीम ने इनको आ लिया और हमने इनको कचरा बनाकर फेंक दिया। दूर हो जालिम कौम, दुनिया का तुझे अंजाम। आप आला से आला चीज लेके आते हैं, फ्रेश फ्रूट लाए, 4 दिन पड़ा रहे आपकी डाइनिंग टेबल, खाए बगैर छिलके उसके काले पड़ जाएंगे, और खा लिया तो उसके छिलकों को जरा बिन में 2 दिन रखिए, फिर देखिए जो मक्खियां और भिन भिन होगी। اس طرح وہ لوگ جو اس کائنات کا مقصد نہیں سمجھتے نا, اللہ کہتا ہے میں ان کو دنیا سے یوں پھینک دیتا ہوں, کچرا بالکل ختم. آپ دیکھیے کہ لوگ اللہ کے کلام پڑھنے والوں کو ملا کہتے ہیں, اور دنیا دار جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے پاس بہت بڑے بڑے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آ کر جو اللہ کے کاموں کو نہیں لے کے چلتا, اللہ کے پلان میں رنگ نہیں بھرتا, پھر اس کا انجام آخر میں ڈسٹ بن ہے. تو لکھ لیجئے جہنم کیا ہے, ایک بہت بڑا ٹریش کین, ڈسٹ بن جس میں لوگوں کو پھینک لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنکھیں کھول دیں. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں, کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے, جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اس کو جھٹلا دیا. یہ عادت ہے لوگوں کی حق کو جھٹلانا, اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے, حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. یہ کمنٹس ہیں پچھلی قوموں پہ, جن کے لیے ہو سکتا ہے اگر ان کے کوئی باقی بچی ہوں چیزیں تو لوگوں نے میوزیمس میں رکھے ہوں, کلچر کے نام پہ ان کو پیش کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو حق کی بات سننے کا شوق نہیں تھا, اللہ نے ان کو بے وزن کر دیا, اور ہوتے ہوتے انسانیت حضرت موسیٰ کے دور پہ پہنچ گئی. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. انہوں نے تکبر کیا, وکان قومن عالین, اور وہ خود کو بہت بڑا سمجھنے والے لوگ تھے. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے, یہ ہی نہیں سمجھ آتا لوگوں کو. اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے, یعنی ہمارے ڈرائیور کا بیٹا اب ہمیں تبلیغ کر رہا ہے تو ماننے لگ جائے, یہ مطلب ہے. بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے, اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. کتابوں سے ہدایت لینی ہوتی ہے, لیکن لوگ جب کتاب نہیں سنتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل دنیا سے نکال دیتا ہے. آپ دیکھیے جس سوسائٹی میں ان لیڈز ہدایت پہ آ جاتے ہیں نا, تو دین لوگوں کی نظروں میں اوپر اٹھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز ایڈورٹائزنگ کمپنیز کسی ہیرو کے ہاتھ میں یا اس کے جسم پہ دکھا دیتی ہیں, لوگ اس کو خریدنے چل پڑتے ہیں. دین کے ساتھ بھی یہی ہے. جب دین عام طبقے تک رہتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں دین ہلکا ہی ہوگا جو سب نے خریدا ہوا ہے, سستا ہی ہے, یہ ڈالر اسٹور کا مال ہے. لیکن 4, 6, 10 بڑے لوگ جو معاشرے میں لیڈ ہیں, اور اگر اللہ نے آپ کو کسی جگہ مقام دیا ہے تو آپ اس دین کو اٹھا کے پہنیں, اپنے سر سے پاؤں تک دین کو لائیں, آپ دیکھیں گے ایک دم دین کی قیمت بڑھ جائے گی. آج اگر ایلیزبتھ ٹیلر جو ہے وہ سمجھے کہ اسکارف پہننے لگ جائے نا تو اسکارف کے اور حجاب کی قیمتیں بڑھنے لگ جائیں, اور اگر آج اوباما کی بیوی نقاب کرنے لگے تو نقاب دنیا میں نایاب ہو جائیں. 4-6 لوگ اٹھیں ذرا کہ جو اس دین کو اس کا مقام دلائیں. ہمارے جیسوں کو دیکھ کے تو لوگ باتیں کریں گے, لیکن جن کو اللہ رول ماڈل بناتے ہیں, ہر ایک سوچے میں کہاں رول ماڈل ہوں, خاندان میں, دوستوں میں, فیملی میں, بس آپ ان کا ٹھیکہ لے لیں کہ اللہ چلو آج سے پھر میں ان تک بات پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں. پھر اس کے بعد ابن مریم اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک بلند سطح پر رکھا جو اطمینان کی جگہ پر تھی, اور چشمے اس میں جاری تھے, بیت لحم کی طرف اشارہ جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. کرو کیا, یا ایھا رسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے پیغمبرو کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور عمل کرو صالح, جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا, اور تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, بس مجھے سے ڈرو, لوگوں کا ڈر دل سے نکال دو. یہ تو تھا نبیوں کے دور تک پیغام, لیکن بعد میں کیا ہوا؟ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, اور ہر گروہ کے بعد جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ جس کو دین کا جو ورژن اچھا لگا, دین کا جو حکم اچھا لگا, اس کو پورا دین بنا کے باقی سب پیچھے کر دیا. اچھا تو چھوڑو انہیں, یعنی ذرا ان کو پیچھے کرو. ڈوبے رہے غمرتہم, اپنی غفلتوں میں, کب تک؟ حتی ہین, ایک وقت خاص تک. اب اللہ کا ان کے اوپر تبصرہ دیکھیے, ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ یعنی جو مال اور اولاد ہے کیا اللہ کا ان پہ فضل ہے؟ کبھی اپنے گھروں کے باہر لکھا ہو دیکھا ہوگا, اب تو کوئی نہیں لکھتے ہاں زمین فضل ربی, پہلے لکھتے تھے, اب تو ڈر لگتا ہے پتہ نہ چل جائے یہ مسلمان کا گھر ہے. جی اللہ کہتے تم سوچتے ہو یہ نافرمانی سے لی ہوئی چیز اللہ کا فضل ہے, یہ کیوں نہیں لکھتے ہاض آزمائش ربی, ہاض بلا ربی؟ تو اللہ کہتے یہ مال اور اولاد جو دن بدن تمہارا بڑھ رہا ہے, کیا یہ سوچتے ہو کہ اللہ تمہیں خیر دے رہا ہے؟ نہیں, असल मामले का इन्हें शऊर नहीं। देखिए, आपने रेशम के कीड़े के बारे में सुना होगा, उसके मुंह से एक लुआब निकलता है, पतला सा होता है, वो फिर उसको अपने इर्द गिर्द यूं फेरता है एक सर्कल, जो ही वो दायरा होता है ना वो सख्त हो जाता है, इस तरह अपने मुंह से लुआब बुनता है, ये उसका वो रेशम है जो बाद में फिर हम कपड़ों की सूरत में पहनते हैं। वो अपने इर्द गिर्द जाल बुनता रहता है, एक बॉल सी बन जाती है उसके इर्द गिर्द, और एक दिन आता है कि उस जाल के अंदर, उस बॉल के अंदर आखिरी तार लगता है, और उसके बाद ऑक्सीजन अंदर जाना रुकती है, और वो ही छोटा सा बॉल रेशम के कीड़े की कब्र बन जाता है। अब इस आयत को सुनिए कि जो माल और औलाद इनको दी जा रही है, क्या ये सोचते हैं कि हम इनको खैर दे रहे हैं? नहीं, असल मामले का इन्हें शऊर नहीं है। क्या करें फिर, परेशान हो गए हम तो, कुरान पढ़ पढ़ के ऐसे लगता है धनी क्या है, जो दिया अल्लाह ने वो भी ठीक नहीं है, जो नहीं है क्या करें। तो अल्लाह कहते नहीं, माल बहुत अच्छी प्यारी चीज है, माल तो पर है, माल तो चप्पू है जिसके साथ आखरत की कश्ती चलेगी। करो क्या इस माल और दौलत और औलाद को लेकर, नुसारी लहुम फिल खैरात, नेकियों में बढ़ो। वो लोग कौन जिनको अल्लाह ने माल दिया और वो इस माल का फायदा उठाते हैं, वो कौन है? इन्नल्लज़ीना, वो लोग जो मिन खशयति रब्बिहिम मुशफिकून, वो अपने रब की खशियत से डर रहे होते हैं, जिनका हाल क्या है, भलाइयों की तरफ दौड़ने वाले और अपने रब की तरफ से खौफ रखने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम यूमिनून, दर हकीकत वो लोग हैं जो अपने रब के खौफ से डरते रहते हैं, जो अपने रब की आयात पर ईमान लाते हैं, और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते। हज़रत आयशा ने पूछा था इस आयत पे कि अल्लाह के नबी, क्या इससे मुराद चोर और डाकू है, जानी है, यदि गुनाह करते हैं तो फिर अल्लाह से डरते हैं? का नहीं, सिद्दीक की बेटी, ये मामला नहीं है, इससे मुराद रातों को तहज्जुदें पढ़ने वाले, अल्लाह के हुक्मों को मानने वाले, नेकियों में भागने वाले, फिर डरते हैं इस बात पे कि कबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये असल मसला मेरा और आपका, कभी अपनी नेकियों का गरूर ना करें। आप देखिए कि नेकियों का मान बंदे को मुतकब्बिर बना देता है। जहन में जरा लाइए किसी दौड़ को, रेस होती है ना, कोई भी रेस होती है ना, तो उसके अंदर जाने से पहले लोगों की ट्रेनिंग होती है, उसको भगाते हैं। अब ये सारी आयतें सुनते वक्त जरा सोचिए कि क्या मैं नेकियों की दौड़ में हूँ या गुनाहों की। कभी भी किसी ने ऐसी रेस नहीं जीती, उसके पीछे वजन कम करना, कपड़ों को हल्का रखना, अपने लीडर को फॉलो करना होता है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले इतनी हिदायत लेते हैं अपने कोच से, फिर चलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम पे पाबंदियां लगेंगी। तो एक छोटी सी रेस, एक कॉम्पिटिशन को जीतने वाला इतनी पाबंदियां खुद पे लगाए। कई आपने लोगों के इंटरव्यूज पढ़े होंगे कि वो ये नहीं खाती कि मोटी ना हो जाएं, जैसे गुलकार हैं, अदाकार हैं, कुछ गुलकार हैं वो कहती हैं हम पानी नहीं ठंडा पीते ताकि हमारी आवाज ठीक हो, सुबह उठ के रियाज करते हैं, कितने सुर तापते हैं। कितनी फिल्मी अदाकार हैं जो खाती नहीं पीती नहीं कि हम पतले रहें, मशीनों में जा जाके कटवाती हैं, उनको क्या मिलना है? लेकिन हम जिनको इतना कुछ मिलना है, उनकी नेकियों की दौड़ कितनी है? जरा खुद से इस पे एक सवाल तो लिखिए कि मेरा नेकियों की तरफ भागना किस स्पीड से है। देखिए, एक होता है नेकी की तरफ भागना और एक होता है नेकियों से भागना। तो अपने आप को पूछते हैं कि हम किधर है, स्पीड होती है ना 60, 70, 80, इस तरह सोचिएगा। अब दोबारा सुनिए इसको, ये वो लोग हैं, वल्लज़ीना, वो लोग कौन, यू तू नबिलाम राजन, ये वो लोग हैं कि देते हैं जो कुछ भी देते हैं और दिल इनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है। ये असल बात, रब की तरफ पलटने का एहसास इंसान को भगाता है, दौड़ाता है, दौड़ाता है, और यही लोग हैं जो लाए का यू सारे फिल खैरात वहुम लहा साबिकून, ये लोग नेकियों में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और फिर भागते जाते हैं, भागते जाते हैं, हर वक्त बड़प में होते हैं कि ये नेकी मैं ही ना ले लूं, ये मेरे हिस्से की नेकी कोई क्यों ले, चलो ये भी मैं ही कर लेती हूँ, चलो इसको भी मैं करती हूँ। लेकिन याद रखिए, हर वक्त काम करना नेकी नहीं होता, कभी रुकना भी है। कई मिसअंडरस्टैंडिंग आने लगी, दूसरे एडमिन की नीयत बदल गई, हाय मेरा काम किसी ने ले लिया, मैं आती थी यहाँ काम होता था, अब तो कोई और कर रहा है। नहीं, वो फौरन अपना काम छोड़ के चलते हैं, यानी सिस्टम को मानने वाले असल में नेकियां करते हैं। फरमाए वाला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी शख्स को उसकी कुदरत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। हमारे पास एक किताब है जो हर एक का हाल ठीक ठीक बताने वाली है। सोचिए, नामे अमाल, और लोगों पर जुल्म बहर हाल ना किया जाएगा, लेकिन लोगों का हाल क्या, बल कुलूबुहुम फी गमरतिन, अल्लाह अकबर, मगर इनके दिल तो इस मामले से बेखबर है, गमरा का मनी पता कहते डुबकियां, डूबे हुए दिल तो कहीं और पड़े हुए इनके, और इनके अमाल भी उस तरीके से जिसका ऊपर जिक्र किया गया मुख्तलिफ है, यानी अच्छे नहीं है। वो अपने ये करतूत किए चले जाएंगे, यहाँ तक जब हम इनके अय्याश लोगों को अजाब में पकड़ लेंगे तो फिर वो डकारना शुरू कर देंगे। सारी जिंदगी मौज मस्ती, प्ले बॉय, बस सारा वक्त नफ्स को पूजा। अब सोचिए मौत के वक्त क्या कर रहे हैं, कहा क्या जाएगा? उनकी ये डांट नोट कीजिए कि जब वो पकड़े जाएंगे कहा जाएगा ला तजरुल यौम इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून। अब बंद करो अपनी फरियादो फुहा, हमारी तरफ से अब कोई मदद तुम्हें मिलने वाली नहीं। मेरी आयत सुनाई जाती थी तो तुम रसूल की आवाज सुनते ही उल्टे पांव भाग जाते थे, क्यों मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून। अपने घुमंड में इसको खातर में ही न लाते थे और अपनी चौपालों में उस पर बातें छांटते और बेकार बातें करते थे। इतनी बड़ी हकीकत है। आज किताब से रोकने वाली क्या यही चीजें नहीं है? या तो तकब्बुर है या ये महफिलें, चौपाले नहीं थी तो आज के ड्राइंग रूम्स है और टीवी लॉन्जेस है और बैठ बैठ कैसी बातें कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को फिक्शन आज कुरान पे नहीं आने दे रहा, तो क्या जरूरत है? अनिल लख भी मोहरे दोन, एराद करेंगे लख से तो जिंदगी आसान होगी। तो क्या इन लोगों ने कभी इस कलाम पर गौर नहीं किया? ये आप सबको कहा जा रहा है, सिर्फ सुन रहे हैं या गौर भी कर रहे हैं? या कोई ऐसी बात लाया जो कभी इनके बड़ों के पास ना आई थी, या ये अपने रसूल से कभी वाकिफ ना थे कि अनजाना आदमी होने के बायस नहीं पहचान रहे? यानी कोई तो रीजन बताओ कि इसकी बात क्यों नहीं सुनते। फहम लहु मुनकिरून, ये इससे बिदकते हैं, यानी अल्लाह को गुस्सा आ रहा है कि ये इस नबी की इतनी प्यारी बातों से क्यों बिदकते हैं, इनको एतराज किया इसके ऊपर। अम यकुलून बिही जिन्ना, या ये इस बात के कायल हैं कि ये मजनून है? नहीं, असल मसला पता क्या लोगों का, बल जाहुम बिल हक। इसको हाईलाइट करें, इस सूरत के एंड पे आप देखें, अब हक की बातें नहीं, असल मसला ये कि बल्कि वो हक लाया है। लोगों को हक बुरा लगता है, रसूल किसको बुरे लगते हैं? वो तो इतने पोलाइट होते हैं। आज भी देखिए आमतौर पे दीनदारों के अखलाक बुरे तो नहीं होते, दीनदार बड़े सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, अच्छी बातें करते हैं, मजा भी आता है। लोगों को दीनदार नहीं बुरे लगते, वो हक बुरा लगता है जो उनकी जुबान से, जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग लगता है। तो फरमाए अक्सरियत को तो हक पसंद ही नहीं है।